بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراج ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متر، زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام سویکار کریں۔ شروتاؤں، آج بھی اپنے کارکرم کا آرمبھ ہم قرآن مجید کی پوتر آیتوں کی تلاوت اور ان کے انواد سے کر رہے ہیں۔ آج اب سورہ واقعہ کی آتما کو شانتی پردان کرنے والی پہلی سے لے کر سولہویں آیتوں تک کی تلاوت اور انواد سنیں گے۔ قاری ہیں سورگیے محمد صدیق منشاوی۔
بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين صدق الله العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے، جب وہ گھٹت ہونے والی مہان گھٹنا ارتھات قیامت گھٹ جائے گی اور اس کے گھٹت ہونے میں کچھ بھی جھوٹ نہیں، وہ گھٹنا الٹ پلٹ کر دینے والی ہوگی، اس سمے دھرتی کو بھوکمپ کے زبردست جھٹکے لگیں گے اور پہاڑ ٹوٹ کر چور چور ہو جائیں گے، تو وہ بکھری ہوئی دھول ہو کر رہ جائیں گے، اور تم لوگ تین پرکار کے ہو جاؤ گے، تو داہنے ہاتھ والے، اور کیا کہنا داہنے ہاتھ والوں کا، اور بائیں ہاتھ والے، اور کیسے دربھاگی ہوں گے بائیں ہاتھ والے، اور آگے بڑھ جانے والے تو آگے بڑھ جانے والے ہی ہیں، وہی اللہ کے نکٹ ورتی ہیں، وہ سورگ کے نعمت بھرے باغوں میں ہوں گے، اگلوں میں سے تو بہت سے ہوں گے اور کچھ پچھلوں میں سے بھی ہوں گے، جو موتی اور یاقوت جڑے تختوں پر ٹیک لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ شروتاؤں، میں ہوں احمد عباس، میرا سلام سویکار کیجیے۔ ہمارا پرسارن آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ برابر 9390 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ شروتا، ہمارا ای میل ایڈریس ہے hindi@ws.irib.ir، اور ہماری ویب سائٹ ہے parstoday.com/hi۔ واٹس ایپ پر ہمارا سمپرک نمبر ہے 0098903506542۔ شوتاو، آج بدھوار ہے، دے ماس کی 29، جمادی الثانی کی 16 اور جنوری کی 19 تاریخ۔ ہماری سمے کی سبھا میں پرسارت کیے جانے والے کاریکرموں کی روپ ریکھا آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ آج کی سبھا میں سب سے پہلے ہم آپ کو سنائیں گے انتراشٹریہ سماچار، جس کے بعد ہم پرست کریں گے کاریکرم راجنیتک چرچا، جس پر آپ الگ الگ وشیوں پر ہماری رپورٹیں اور سمیکشا سنیں گے۔ کاریکرم راجنیتک چرچا کے بعد ہم آپ کو ایک وشیش کاریکرم سنائیں گے، جس کا شیرشک ہے غزہ دیوس، اور سبھا کا انتم کاریکرم ہوگا آج کل۔ تو یہ ہے اس سمے کی سبھا میں پرست کیے جانے والے کاریکرموں کی روپ ریکھا۔ کچھ دیر بعد آپ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا سے سنیں گے انتراشٹریہ سماچار۔ یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ لیجیے شوتا، اب مریم مہردادی اور احمد عباس سے سنیے وشو سماچار۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آج کے مکھیہ سماچاروں کا سارانش۔ راشٹرپتی سید ابراہیم رئیسی مہتوپورن یاترا پر روس پہنچے ہیں۔ ایران نے کہا کہ یمن پر حملوں سے سمسیا کا سمادھان نہیں ہوگا۔ بیت المقدس میں فلسطینیوں کے محلے میں ایک بار پھر وباد زور پکڑنے لگا ہے۔ بھارت میں جھانکیوں کے مدعے پر کچھ راجیوں اور کیندر سرکار کے بیچ نوک جھونک دیکھنے میں آئی ہے۔ اور اب آپ وستار سے سماچار سنیے۔
اسلامی گنتنتر ایران کے راشٹرپتی سید ابراہیم رئیسی روس کی یاترا پر گئے ہیں۔ اس مہتوپورن یاترا کے لیے روانہ ہوتے سمے راشٹرپتی رئیسی نے کہا کہ ایران اور روس کے بیچ ہونے والی وارتائیں علاقے کی سرکشا، ارتھ ویوستھا اور ویاپار کے لیے پربھاوی ثابت ہوں گی۔ راشٹرپتی رئیسی کا کہنا تھا کہ روسی راشٹرپتی ولادیمیر پوتین کی دعوت پر ہونے والی یہ یاترا کھیتریہ کوٹنیتی کو اور ادھک مضبوط کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم روس سہت اپنے پڑوسی دیشوں سے مضبوط رشتے چاہتے ہیں، اور راجنیتک، آرتھک تتھا ویاپارک کھیتروں میں یہ سفر رشتوں کی مضبوطی اور سہیوگ کے نئے ادھیائے کی شروعات ثابت ہو سکتا ہے۔ راشٹرپتی رئیسی نے کہا کہ ہم شنگھائی سہیوگ سنگٹھن کے دائرے میں بھی روس سہت سبھی دیشوں سے سہیوگ بڑھائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور روس کے بیچ سنیکت ہتوں اور آپسی سہیوگ سے پورے کھیتر کی شانتی اور سرکشا کو مضبوطی ملے گی۔ راشٹرپتی رئیسی اپنے اس سفر میں روس کے راشٹرپتی ولادیمیر پوتین سے ملاقات کر رہے ہیں، جبکہ روسی سنسد کے سنیکت ستر کو بھی سمبودھت کریں گے اور پرواسی ایرانیوں تتھا روسی ادیوگپتیوں کی بیٹھکوں میں بھی حصہ لیں گے۔ راشٹرپتی رئیسی کا یہ 2 دیوسیہ روس دورہ ہے، جس میں ودیش منتری، پیٹرولیم منتری اور وت منتری سہت کئی ادھیکاری ان کے ساتھ ہیں۔
اسلامی گنتنتر ایران کے ارجا منتری جواد اوجی نے کہا کہ گیس وپر کے سندر میں ایران اور روس نے بڑا فیصلہ کیا ہے، جس سے پورے علاقے کے حالات بدل جائیں گے۔ ایران کے راشٹرپتی سید ابراہیم رئیسی کی ماسکو یاترا کے سندر میں بات کرتے ہوئے پیٹرولیم منتری جواد اوجی نے کہا کہ پچھلے ایک مہینے سے ارجا سہت انیک کھیتروں میں روس کی سرکار اور کمپنیوں سے سہیوگ کی سمبھاوناؤں کی سمیکشا کی جا رہی ہے۔
उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति की यात्रा के पहले ही दिन ऊर्जा, परिवहन, कृषि, बिजली सहित कई क्षेत्रों के बारे में बड़ी अच्छी वार्ताएं हुई, जबकि जारी परियोजनाओं के बारे में भी बहुत अच्छे फैसले किए गए। औजी ने कहा कि अगर ऊर्जा सेक्टर की बात की जाए तो तेल व गैस के मैदानों को डेवलप करना, रिफाइनरियों का विस्तार और तेल व गैस उद्योग से जुड़े उपकरणों और मशीनों का लेन देन मुख्य रूप से चर्चा में रहा। पेट्रोलियम मंत्री ने बताया कि व्यापक सहयोग का रोडमैप तैयार करके रूस को दिया जा चुका है, जिसके तहत दोनों देशों के बीच कई नए समझौते होंगे। ईरान और रूस दुनिया का सबसे बड़ा गैस भंडार रखने वाला देश है, जबकि ओपेक प्लस के प्लेटफॉर्म पर भी दोनों देशों के दृष्टिकोण एक दूसरे से काफी करीब हैं। वहीं दूसरी ओर रूस में ईरान के राजदूत काजिम जलाली ने कहा कि रूस हमारा पड़ोसी देश है, जिसका दुनिया के देशों से सालाना आयात 230 अरब डॉलर का है, यानी ये ईरान के पड़ोस में बहुत बड़ा बाजार है। काजिम जलाली ने राष्ट्रपति रईसी के सफर के बारे में कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण है और दोनों देशों के राष्ट्रपतियों की मुलाकात 2 घंटे से ज्यादा लंबी हो सकती है।
इस्लामी गणतंत्र ईरान ने एक बार फिर कहा है कि यमन पर हमले और उसकी नाकाबंदी समस्या का हल नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सईद खतीबजादे ने कहा कि नाकाबंदी और सैन्य हमले से यमन का संकट हल नहीं होगा और इस प्रकार की कार्यवाही से क्षेत्र में तनाव का दायरा बढ़ेगा। मंगलवार को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईरान यमनी जनता की नाकाबंदी खत्म होने पर आधारित राजनीतिक हल की पहल, युद्ध की समाप्ति और यमन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप से बचना, इस देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा और मानवीय त्रासदी की तीव्रता को रोकने पर शुरू से ही बल देता आ रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सईद खतीबजादे ने क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बारे में कहा कि इस्लामी गणतंत्र ईरान शुरू से ही कहता रहा है कि क्षेत्र में किसी भी संकट का हल जंग और हिंसा नहीं है।
यमन की नेशनल सॉल्यूशन सरकार के प्रवक्ता मोहम्मद अब्दुस्सलाम ने यमन पर सऊदी गठबंधन के भयानक हमलों पर रियाद सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि आपराधिक कार्रवाइयों से युद्ध की आग और तेज होगी। यमन की सरकार के प्रवक्ता ने बुधवार को कहा कि सऊदी गठबंधन बार बार आपराधिक कार्रवाइयां कर रहा है और चूंकि विश्व समुदाय इसकी अनदेखी करता रहता है, इसलिए जंग बंद नहीं हो रही है। मोहम्मद अब्दुस्सलाम ने कहा कि यमन की जनता कई साल से नाकाबंदी और हमलों का दंश झेल रही है, तो उसे अपने शहीदों का इंतकाम लेने का पूरा अधिकार है। यमन में इमारात के विध्वंसकारी हस्तक्षेप के जवाब में सोमवार को यमन की सेना और स्वयंसेवी फोर्सेज ने बड़े सटीक हमले किए, जिसके बाद सऊदी अरब ने यमन पर हमले और तेज कर दिए हैं। राजधानी सना में सऊदी अरब की बमबारी में 12 आम नागरिक मारे गए और 11 घायल हो गए। बुधवार को इमारात के युद्धक विमानों ने सना पर 15 बार बमबारी की।
इसराइल ने बैतुल मुकद्दस के बहुचर्चित शेख जर्राह मोहल्ले में एक फिलिस्तीनी इमारत को गिरा दिया। घर गिराने की कार्यवाही के दौरान प्रतिरोध करने वाले परिवार और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। इसराइली पुलिस ने महमूद सालेहिया नाम के फिलिस्तीनी का घर गिराया है और ये दावा किया है कि घर गैर कानूनी था, क्योंकि इसका निर्माण स्कूल की जगह पर किया गया था। हकीकत यह है कि शेख जर्राह मोहल्ले में स्थित फिलिस्तीनी घरों के खिलाफ पिछले कई महीनों से इसराइल की विध्वंसकारी गतिविधियां चर्चा का विषय बनी हुई हैं। बुधवार की सुबह घर के लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर उसे गिरा दिया गया। इसराइली पुलिस ने सोमवार को भी घर गिराने की कोशिश की थी, लेकिन परिवार के प्रतिरोध के कारण उसे पीछे हटना पड़ा। महमूद सालेहिया का कहना है कि वो अदालत में अपना मुकदमा लड़ रहे हैं, लेकिन इसराइली पुलिस ने उनका घर गिरा दिया। सालेहिया का कहना है कि उनका परिवार 1948 से इस मकान में जीवन गुजार रहा है।
लेबनान के एक जानकार सूत्र ने बताया कि वाशिंगटन ने कुछ मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए हिजबुल्लाह से संपर्क करने की अपील की है और हिजबुल्लाह ने बहुत ही कड़ाई से अमरीका की इस अपील को ठुकरा दिया है। फास्ट न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार लेबनान के एक समाचार पत्र ने खबर दी है कि वाशिंगटन ने हिजबुल्लाह के अधिकारियों से वार्ता की अपील की है। अल अखबार समाचार पत्र की मंगलवार की रिपोर्ट के अनुसार कुछ मध्यस्थ लोगों ने अमरीकी सरकार का संदेश हिजबुल्लाह तक पहुंचाया है और लेबनान के कुछ मामलों की समीक्षा के लिए इस आंदोलन से संपर्क की अपील की है। समाचार पत्र अल अखबारिया ने ब्यौरा दिए बिना लिखा कि हिजबुल्लाह ने मध्यस्थ को बताया कि वो किसी भी प्रकार से अमेरिका से संपर्क नहीं करेगा। दूसरी ओर हिजबुल्ला के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि अमेरिका बारंबार संपर्क करने का प्रयास कर रहा है।
मानवाधिकार संस्था का कहना है कि सऊदी अरब की सरकार मृत्यु दंड पाने वाले लोगों के शव भी उनके अपने पास बंधक बनाकर रखती है। फास्ट न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार आले सऊद सरकार के हाथों वर्षों पहले सजाए मौत पाने वाले विरोधियों की लाशें अभी तक उनके परिजनों के हवाले नहीं की गई हैं, जबकि कुछ को तो अज्ञात स्थान पर ही दफन कर दिया गया। यूरोपीय सऊदी अरब मानवाधिकार संगठन ने अपनी रिपोर्ट में सऊदी अरब के विरोधियों के अधिकारों के उल्लंघन पर प्रकाश डाला और लिखा कि सऊदी अरब की सरकार अपने विरोधियों को सजाए मौत देने के अतिरिक्त उनके शवों को उनके परिजनों के हवाले तक नहीं करती।
भारत के गणतंत्र दिवस परेड के लिए कुछ राज्यों की झांकियों को मंजूरी न मिलने पर शुरू हुआ विवाद। क्षमा कीजिए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बाद तमिलनाडु में उनके समकक्ष एम के स्टालिन ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। इस बीच केरल सहित गैर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के कुछ नेताओं ने आरोप लगाया कि ये केंद्र द्वारा अपमान है। कुछ राज्यों की झांकियों का चयन होने पर उन राज्यों द्वारा की जा रही आलोचनाओं को खारिज करते हुए केंद्र सरकार के सूत्रों ने कहा कि ये गलत परंपरा है और झांकियों का चयन केंद्र सरकार नहीं बल्कि एक विशेषज्ञ समिति करती है। केंद्र सरकार के सूत्रों ने कहा कि केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के प्रस्तावों को विषय विशेषज्ञ समिति ने उचित प्रक्रिया और विचार विमर्श के बाद खारिज किया है।
भारत नियंत्रित जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने कश्मीर प्रेस क्लब को अपने नियंत्रण में ले लिया। प्रशासन ने कहा कि पत्रकारों के विभिन्न समूहों के बीच असहमति और अप्रिय घटनाओं के मध्य ये फैसला किया गया। बताया जाता है कि 15 जनवरी को स्वतंत्र पत्रकारों और अखबार मालिकों के एक समूह ने कश्मीर प्रेस क्लब परिसर में घुसकर क्लब का नया प्रबंधन होने का दावा किया था। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के नेतृत्व में सोमवार को जम्मू एवं कश्मीर प्रशासन ने कहा कि कश्मीर प्रेस क्लब का पंजीकरण सोसाइटी अधिनियम के तहत दोबारा पंजीकरण कराने में असफल रहने पर कोई वजूद नहीं रह गया है। प्रशासन ने जारी बयान में कहा कि प्रेस क्लब के मौजूदा प्रबंधन निकाय का कानूनी रूप से 14 जुलाई 2021 को अंत हो चुका है। इसी तारीख को कार्यकाल भी समाप्त हो गया था। यह नया घटनाक्रम बीबीसी, एसोसिएटेड प्रेस सहित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार संगठनों से जुड़े स्वतंत्र पत्रकारों के एक समूह द्वारा कश्मीर प्रेस क्लब के नए प्रबंधन निकाय के लिए चुनाव आयोजित कराने हेतु एक समिति नामित करने के ऐलान के कुछ घंटों बाद हुआ है।
भारत के महाराष्ट्र राज्य के मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड में भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS रणवीर में मंगलवार को हुए विस्फोट में नौसेना के 3 कर्मियों की मौत हो गई। भारतीय नौसेना ने बयान में कहा कि मुंबई नौसेना डॉकयार्ड में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में INS रणवीर के आंतरिक कक्ष में विस्फोट के कारण नौसेना के 3 कर्मियों की मौत हो गई।
तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने कहा कि उनका देश भूमध्य सागर की विवादित गैस पाइपलाइन के लिए अमरीकी समर्थन में कमी आने के बाद इसराइल से तनावपूर्ण संबंधों को बेहतर करने के लिए तैयार है। AFP की रिपोर्ट के अनुसार रजब तैयब अर्दोगान ने यह बयान तब दिया है जब तुर्की एक साल से आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से अंतर्राष्ट्रीय समाचार समाप्त हुए।
یہ تہران ہے اسلامی گنتنتر ایران کی آواز۔
راجنیتک چرچا۔
श्रोताओ, राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में मोहम्मद मेहंदी का सलाम स्वीकार कीजिए। श्रोताओ, यमनी सेना और स्वयं सेवी बलों ने बारंबार की चेतावनी के बाद संयुक्त अरब इमारात के भीतर महत्वपूर्ण ठिकानों पर मिसाइलों और ड्रोन विमानों से हमले किए। ऑपरेशन के दौरान अबू धाबी के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और तेल रिफाइनरी सहित महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसमें 3 लोग मारे गए और 6 अन्य घायल हुए। یمنیوں کے اس آپریشن نے پوری دنیا میں ہنگامہ مچا دیا ہے۔ عراق میں 10 اکتوبر کو سنسدیہ چناؤ آیوجت ہوئے تھے۔ عراق میں راجنیتک درشتے نہ کی سمویدھان کے انوسار راشٹرپتی کا پد کرتوں سے سمبندھت ہے، جبکہ سنسد سبھاپتی کا پد سنی مسلمانوں سے اور پردھان منتری کا پد شیعہ مسلمانوں سے سمبندھت ہے۔ کردوں نے جو سامانیہ سنی مسلمان ہیں برہم صالح کو راشٹرپتی پد کے لیے چنا ہے۔ عراق کے سنی مسلمانوں نے محمد الحلبھوسی کو سنسد سبھاپتی کے روپ میں سویکار کیا ہے، کنتو پردھان منتری پد کے لیے اب شیعہ مسلمانوں کے راجنیتک دلوں میں وچار وماش چل رہا ہے۔ شروتاؤ، جیسا کہ آپ کو گیات ہے کہ بھارت کے 5 راجیوں میں ودھان سبھا کے لیے چناؤ ہونے والے ہیں، پرنتو ان سب میں مہتوپورن اتر پردیش کا چناؤ ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے کئی ودھائک پارٹی چھوڑ کر سماج وادی پارٹی میں چلے گئے، جس سے بھاجپا کو کافی جھٹکا لگا، پرنتو آج اس کا الٹا ہوا، یعنی سماج وادی پارٹی کے پرمکھ ملائم سنگھ یادو کی چھوٹی بہو اپاڑا یادو نے پارٹی چھوڑ کر بھاجپا کا دامن تھام لیا ہے۔
راشٹر سب سے پہلے ہے، مجھے لگتا ہے کہ راشٹر کا دھرم میرے لیے سب سے زیادہ۔
شوتو، یمنی سینا اور سوئم سیوی بلوں نے بارمبار کی چیتاونی کے بعد سنیوکت عرب امارات کے بھیتر مہتوپورن ٹھکانوں پر میزائلوں اور ڈرون ویمانوں سے حملے کیے۔ آپریشن کے دوران ابو دھابی کے انتراشٹریہ ہوائی اڈے اور تیل ریفائنری سہیت مہتوپورن ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا، جس میں 3 لوگ مارے گئے اور 6 انیہ گھائل ہوئے۔ یمنیوں کے اس آپریشن نے پوری دنیا میں ہنگامہ مچا دیا ہے۔ ساتھ ہی اختر عباس،
17 جنوری 2022 کو یمنیوں نے سنیوکت عرب امارات کے ورودھ یمنیوں کے طوفان نامک آپریشن کو انجام دیا، جس پر ویاپک استر پر پرتکریائیں آ رہی ہیں۔ یمنی سینا اور سوئم سیوی بلوں نے بارمبار چیتاونی کے بعد سنیوکت عرب امارات کے بھیتر مہتوپورن ٹھکانوں پر میزائلوں اور ڈرون ویمانوں سے حملے کیے۔ آپریشن کے دوران ابوظہبی کے انتراشٹری ایئرپورٹ اور تیل ریفائنری سہیت مہتوپورن ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا، جس میں 3 لوگ مارے گئے اور 6 انیہ گھائل ہوئے۔ یمنیوں کے اس آپریشن نے پوری دنیا میں ہنگامہ مچا دیا۔ پرتیرودھ کرتا گٹوں نے سنیوکت عرب امارات کی شیطانیوں اور یمن کے معاملوں سہیت شیتر میں اس کے ہستکشیپ کی نندہ کرتے ہوئے اس کاروائی کو یمنیوں کی وجے قرار دیا۔ نجب آندولن کی راجنیتک پریشد کے پرمکھ شیخ علی الاسدی نے ٹویٹ کیا کہ سنیوکت عرب امارات کے مقابلے میں ملنے والی کامیابی پر، جو شیتر میں سامراجوادیوں کا پٹھو اور شیطانوں کا چیلا ہے، ہم یمن کی راشٹریہ سرکار میں اپنے سوتنترتا پریمی بھائیوں کو بدھائی دیتے ہیں۔ عرب دیشوں نے یا تو مون ہی دھارن کر لیا یا یمنیوں کی کاروائی کی نندہ کی۔ بہرحال سنیوکت عرب امارات بھی جنگ میں پوری طرح شامل ہے، اور یمنی ادھیکاریوں نے عزت کے ساتھ دھیرے دھیرے اس دیش کو یمن سے نکلنے کا موقع بھی دیا، لیکن یو اے ای الگ ہی روب میں تھا۔ یمنی سینا کی حالیہ کاروائی نے اس کی ساری ہیکڑی نکال کر رکھ دی۔
عراق میں 10 اکتوبر کو سنسدیہ چناؤ آیوجت ہوئے تھے۔ عراق میں راجنیتک درشتے نہ کی سمویدھان کے انوسار راشٹرپتی کا پد کرتوں سے سمبندھت ہے، جبکہ سنسد سبھاپتی کا پد سنی مسلمانوں سے اور پردھان منتری کا پد شیعہ مسلمانوں سے سمبندھت ہے۔ کردوں نے جو سامانیہ سنی مسلمان ہیں برہم صالح کو راشٹرپتی پد کے لیے چنا ہے۔ عراق کے سنی مسلمانوں نے محمد الحلبھوسی کو سنسد سبھاپتی کے روپ میں سویکار کیا ہے، کنتو پردھان منتری پد کے لیے اب شیعہ مسلمانوں کے راجنیتک دلوں میں وچار وماش چل رہا ہے۔ ساتھ ہی قائم رضوی،
عراق میں 10 اکتوبر کو سنسدیہ چناؤ آیوجت ہوئے تھے۔ ان چناؤں کے ہوئے اب 3 مہینوں کا سمے ہو چکا ہے، کنتو وہاں پر ابھی تک پردھان منتری کا چین نہیں ہو پایا ہے۔ عراق میں راجنیتک درشٹی سے نہ کی سمویدھان کے انوسار راشٹرپتی کا پد کردوں سے سمبندھت ہے، جبکہ سنسد سبھاپتی کا پد سنی مسلمانوں سے، और प्रधानमंत्री का पद शिया मुसलमानों से संबंधित है। कुर्दों ने, जो सामान्यतः सुन्नी मुसलमान है, बरहम साले को राष्ट्रपति पद के लिए चुना है। इराक के सुन्नी मुसलमानों ने मोहम्मद अल हलबूसी को संसद सभापति के रूप में स्वीकार कर लिया है, किंतु प्रधानमंत्री पद के लिए अब शिया मुसलमानों के राजनीतिक दलों के बीच विचार विमर्श चल रहा है। इराक के शिया मुसलमान राजनीतिक दृष्टि से मूल रूप से दो धड़ों में विभाजित हैं, एक मुक्तदा सदर के नेतृत्व वाले दल और दूसरे कई दलों के मिश्रित गठबंधन अल-फतह में। सीधी सी बात है कि जब तक प्रधानमंत्री का चयन नहीं हो जाता, उस समय तक इराक में मंत्रिमंडल का गठन भी संभव नहीं है। कुछ दिन पहले अल-फतह गठबंधन के प्रमुख हादी अल-आमिरी और सदर धड़े के प्रमुख मुक्तदा अल-सदर के बीच वार्ता हुई थी। फतह गठबंधन के एक सदस्य हामिद अल-मूसवी ने बताया है कि दोनों नेताओं के दृष्टिकोण निकट हुए हैं, जिससे ऐसा लगता है कि एक बड़ा गठबंधन वजूद में आ सकता है। इस मुलाकात के बाद मुक्तदा सदर ने ट्वीट किया था कि राष्ट्रीय सहमति के बजाय राष्ट्रीय बहुमत वाली सरकार बनाई जाए। इराक में प्रधानमंत्री पद के लिए किसी के चुनाव में आने वाली इस बाधा के अतिरिक्त एक अन्य मुद्दा भी है, जिसके बारे में इराकी बहुत ही संवेदनशील है। ये विषय है इराक में अमरीकी सैनिकों की उपस्थिति का। कानूनी हिसाब से अमरीकी सैनिकों को 31 दिसंबर 2021 तक इराक छोड़कर चले जाना चाहिए था, किंतु वे अभी भी वहां पर मौजूद हैं। इनकी संख्या 2500 बताई जा रही है। इराक के प्रधानमंत्री के लिए चल रही वार्ता जल्द ही समाप्त हो जाएगी और नए प्रधानमंत्री का चयन भी हो जाएगा, किंतु नई सरकार के सामने सबसे पहला मुद्दा अमरीकी सैनिकों की देश में उपस्थिति का है, जिसे उसे हर हाल में हल करना होगा।
श्रोताओं, जैसा कि आपको ज्ञात है कि भारत के 5 राज्यों में विधानसभा के लिए चुनाव होने वाले हैं, परंतु इन सब में महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में चले गए, जिससे भाजपा को काफी झटका लगा, परंतु आज इसका उल्टा हुआ।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के अनेक विधायकों के समाजवादी पार्टी में चले जाने से जहां भाजपा को झटका लगा था, वहीं समाजवादी पार्टी को भी आज उस समय झटका लगा जब समाजवादी पार्टी के संस्थापक एवं संरक्षक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने भाजपा का दामन थाम लिया। भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद अपर्णा यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा की और कहा कि राष्ट्र धर्म उनके लिए सबसे ऊपर है।
जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ, इसलिए आप सभी लोगों का सहयोग भी बहुत अनिवार्य है।
उन्होंने कहा कि वे किसी भी शर्त पर भाजपा में नहीं आई हैं और भाजपा सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर उन्होंने ये फैसला किया है। उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सब जानते हैं कि मैं हमेशा से प्रधानमंत्री मोदी से प्रभावित रही हूं और मेरे चिंतन में राष्ट्र सबसे पहले है। दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अपर्णा यादव को पार्टी की सदस्यता दिलाई। भाजपा में शामिल होने वाली अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव की पत्नी हैं, जो मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना यादव से हैं। अपर्णा ने ब्रिटेन की मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशंस एवं पॉलिटिक्स में मास्टर की डिग्री ली है। अपर्णा यादव ने वर्ष 2017 का विधानसभा चुनाव लखनऊ कैंट सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ा था, जिन्हें भाजपा की रीता बहुगुणा ने पराजित किया था। उधर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अपर्णा को नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव ने काफी समझाया लेकिन वे नहीं मानी। उन्होंने कहा कि सपा विचारधारा का विस्तार हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि भाजपा में भी हमारी विचारधारा चलेगी। समझा जाता है कि इस बार अपर्णा यादव को प्रत्याशी नहीं बनाए जाने की संभावना थी, जिसे देखते हुए उन्होंने ये फैसला किया है। इसी बीच ये खबर है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी चुनाव में उतर सकते हैं। समझा जाता है कि वे आजमगढ़ जिले की गोपालपुर विधानसभा सीट या फिर मैनपुरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। अखिलेश यादव इस समय आजमगढ़ से सांसद हैं। उन्होंने कहा है कि यदि आजमगढ़ की जनता की अनुमति होगी तो वे अवश्य चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद सपा अध्यक्ष पर भी दबाव बन रहा था, जिसे देखते हुए सपा अध्यक्ष के भी चुनाव लड़ने पर मंथन हो रहा है। शमशाद काजमी, रेडियो तेहरान, दिल्ली।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज़। श्रोताओ, हमारी सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा आजकल, पर उससे पहले आप सुनिए गजा पट्टी के संबंध में हमारा विशेष कार्यक्रम।
दोस्तों, गजा दिवस पर विशेष कार्यक्रम के साथ आपकी सेवा में उपस्थित है स्वाति और अख्तर अब्बास का सलाम स्वीकार करें।
इजरायली शासन ने 27 दिसंबर 2008 को गजा पर हमला किया था और वहां के स्थानीय लोगों का निर्दयता से जनसंहार किया और प्रतिरोध के विरुद्ध उसने मिल्टेड लीड नामक ऑपरेशन शुरू किया। बच्चों का जनसंहार करने वाले शासन ने सोचा था कि 7 से 10 दिन के अंदर प्रतिरोधकर्ता धड़ों को धूल चटा देगा और उनकी शक्ति को कमजोर कर देगा और फिर उनके पास इसराइल के सामने टिकने की शक्ति नहीं रहेगी।
इस जंग में ज़ायोनी शासन ने अपनी सारी शक्ति झोंक दी और उसे अमेरिका का समर्थन भी हासिल हो गया था ताकि हमास को जड़ से उखाड़ के फेंक दे, लेकिन हमास ने यह दिखा दिया कि उसके पास इसराइल और अमेरिका से टकराने की ताकत है और उसने पूरी ताकत के साथ प्रतिरोध किया।
इसराइल 22 दिन के बाद अर्थात 19 जनवरी को बेइज्जत होकर गजा से पीछे हटने पर मजबूर हुआ और इसी उपलक्ष्य में हमास और गजा की जनता के साहसिक प्रतिरोध की सराहना के लिए ईरान में 19 जनवरी को गजा दिवस मनाया जाता है। गजा दिवस का महत्व इसलिए भी ज्यादा है ताकि दुनिया वालों के सामने ये दिखाया जा सके कि दुनिया की बड़ी शक्तियों और जोर जबरदस्ती करने वालों के सामने डटकर उन्हें मिट्टी में मिलाया जा सकता है।
गजा दिवस विश्व कुद्स दिवस की तरह गजा के मजलूम लोगों की आवाजें दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने और इसराइल के अपराधों पर पश्चिमी मीडिया द्वारा पर्दा डालने की कोशिश को उजागर करने का साधन है। तो दोस्तों, आज 19 जनवरी गजा दिवस है, इस अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं।
दोस्तों, गजा पट्टी 40 किलोमीटर लंबाई में और 10 किलोमीटर चौड़ाई में भूमध्य सागर के किनारे पर स्थित है और उसकी सीमाएं मिस्र और अवैध अतिग्रहित फिलिस्तीन से मिलती है। ये एक छोटा सा क्षेत्र तो जरूर है लेकिन रणनीतिक लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। गजा की 11 किलोमीटर की सीमाएं मिस्र के साथ मिलती हैं जबकि 51 किलोमीटर की उसकी सीमाएं अवैध अधिकृत फिलिस्तीन के साथ हैं और 40 किलोमीटर का इलाका भूमध्य सागर के तट पर स्थित है।
गजा का सबसे महत्वपूर्ण इलाका गजा शहर है, जिसकी आबादी लगभग 5 लाख है और इस शहर की आबादी घनी हुई है, जिसकी वजह से यह दुनिया का सबसे घना हुआ इलाका समझा जाता है। इसराइल से मुकाबले में मुसलमानों की फ्रंट लाइन और इसराइल पर हमला करने के लिए सबसे निकट स्थान है, इसीलिए गजा का रणनीतिक महत्व बहुत ही ज्यादा है। दूसरी ओर गजा पट्टी इसराइल के लिए भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि गजा मिस्र से निकट है, जो इसराइल की सुरक्षा और ऊर्जा की नाभि है। इसराइल इस पर कब्जा करके पूरे फिलिस्तीन पर कब्जा कर सकता है और खुद को नुकसान पहुंचाने की चिंता से बच सकता है।
वर्ष 1967 की 6 दिवसीय जंग में गजा पट्टी पर इसराइल ने कब्जा कर लिया था, लेकिन सितंबर 2005 में आखिरकार इसराइली सैनिक इस क्षेत्र से पीछे हटने पर मजबूर हो गए और गजा का इलाका फिलिस्तीनियों के नियंत्रण में एक बार फिर चला गया। इसराइल ने हमास सरकार पर अधिक से अधिक दबाव डालने के लिए इस क्षेत्र का जमीनी और समुद्री परिवेष्टन कर लिया और मिस्र की सीमा से लगे रफा पास से ही गजा का दूसरे देशों के साथ जमीनी संपर्क था।
वर्ष 2008 में इसराइल ने एक बार फिर गजा पट्टी पर भीषण हमले शुरू कर दिए और इसराइल के युद्धक विमानों ने अपना क्रूर और अमानवीय चेहरा दिखाते हुए गजा पर भीषण हमले किए। ये हमले 22 दिन तक जारी रहे और इसके परिणाम में बहुत से घर, अस्पताल, स्कूल, मस्जिदें, दवाखाने, हॉस्पिटल, आधारभूत ढांचे और अहम केंद्र तबाह हुए, जिसके दौरान बच्चे और महिलाएं सहित बहुत से आम लोग हताहत और घायल हुए।
पेश किए गए आंकड़ों के आधार पर 22 दिवसीय गजा युद्ध में 1455 लोग शहीद हुए, जिनमें 404 बच्चे और 115 महिलाएं शामिल थीं। इस जंग में घायल होने वालों की संख्या 5303 बताई गई, जिनमें 1815 बच्चे शामिल थे। फिलिस्तीनी संगठनों की रिपोर्ट के आधार पर इसराइल द्वारा गजा पर थोपे गए 22 दिवसीय युद्ध के दौरान 40 अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को सीधे निशाना बनाया गया या सीधे तौर पर इन पर बमबारी की गई थी। इसकी वजह से स्वास्थ्य मंत्रालय के अस्पतालों और चिकित्सा केंद्रों को $10 मिलियन का नुकसान हुआ।
इतना सारा नुकसान उठाने के बावजूद हमास और गजा की जनता ने 22 दिन तक प्रतिरोध करके अतिग्रहणकारियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और इसराइली सैनिकों को बेइज्जत होकर पीछे हटना पड़ा। वास्तव में इस जंग ने इसराइल के अजय होने की कल्पना को खत्म कर दिया और दुनिया के स्वतंत्रता प्रेमियों के सामने इस शासन की पाशविकता पहले से अधिक उभर कर सामने आई।
इस जंग ने बहुत से अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और पश्चिमी समाज की पोल खोलकर रख दी, जो मानवाधिकारों का दम भरते हैं, जबकि गजा के विरुद्ध इसराइल के पाशविक हमलों में उसका साथ देने में कुछ स्थानीय सरकारों की करतूतें भी उभर कर सामने आ गईं, क्योंकि ये लोग निरंतर इस बात का राग अलापते रहे हैं कि इसराइल को अपनी रक्षा का पूरा पूरा हक है, लेकिन उन्होंने कभी भी सवाल का जवाब नहीं दिया कि अस्पतालों, मस्जिदों और स्कूलों को निशाना बनाना किस मापदंड के अंतर्गत आता है या किस अंतर्राष्ट्रीय नियम और सिद्धांतों से मेल खाता है। वो वर्षों से गजा के परिवेष्टन पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं?
वास्तव में गजा दिवस उन सारे षड्यंत्रकारियों और साजिशकर्ताओं को जवाब है और इसराइल की धूर्तता और उसके धोखा देने को नकारने के अर्थ में है। गजा दिवस एक गंभीर मांग के रूप में फिलिस्तीनियों के छीने गए अधिकारों को वापसी के लिए प्रतिरोध और संघर्ष का प्रतीक है। अपने घरों की ओर वापसी, पूरे फिलिस्तीन का अतिग्रहण खत्म करने और अपने भविष्य निर्धारक का हक इन अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण है।
اسلامی کرانتی کے ورشٹھ نیتا آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی وشو قدس دیوس پر اپنے بھاشن میں اس واستوکتا کو بیان کرتے ہوئے فلسطین کی آزادی کے سنگھرش کے لیے نیا ادھیائے کھولنے، پرتیرودھ کے نئے مورچے کے سامنے آنے اور سنگھرش کرتاؤں کے ہت میں شکتی کے سنتولن کو موڑنے کی اور اشارہ کرتے ہیں، اور کھیت کی گھٹناؤں کی سمپورن سمیکشا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کھیت کی بات یہ ہے کہ زیادہ تر عرب سرکاروں نے بھی پہلے پرتیرودھ کے بعد دھیرے دھیرے گھٹنے ٹیک دیے اور اپنے انسانی، اسلامی، راجنیتک اور عرب بھائی چارے کی ذمہ داری اور دائتوں کو بھولتے ہوئے دشمنوں کے لکشوں کا ساتھ دینے لگی۔
اسلامی کرانتی کے ورشٹھ نیتا فلسطین کے بھوشیہ نردھارن میں پرتیرودھ کے لکشیہ اور اس کے مہتو کی اور سنکیت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس سنگھرش کا لکشیہ فلسطین کی ساری دھرتی کی سوتنترتا اور سارے فلسطینیوں کی اپنی دھرتی کی اور واپسی ہے۔ اس آدھار پر اس زمین پر سرکار کا گٹھن ستی کی پراپتی کی نشانی نہیں ہے بلکہ واسوکتا کی نشانی ہے، کیونکہ آج لاکھوں فلسطینی ایک بار پھر آتم وشواس کو حاصل کر چکے ہیں اور اس مہان سنگھرش کو اپنی شکتی کے بل پر نیا روپ دے سکتے ہیں اور اللہ کی مدد سے انتیم سفلتا حاصل کرنے میں یقین حاصل کر سکتے ہیں۔
دوستوں، اس بات میں کوئی سندیہ نہیں ہے کہ سامراجوادیوں اور زائونیوں کا مکھ لکشیہ مسلمانوں کی نظر میں فلسطین کے مدعے کو کم کرنا اور اس مدعے کو ٹھنڈے بستے میں پہنچا دینا ہے۔ اسی پریدھی میں امریکہ اور اسرائیل کی نیتیاں، پرتیرودھ کے مورچے میں ہی نئی جھڑپیں شروع کرنا اور فلسطینیوں کو آپس میں بھڑانے کے لیے آنترک یدھ کی آگ بھڑکانا ہے تاکہ اسرائیل اور اس کے سمرتھکوں کو موقع مل جائے۔ یہی کام انہوں نے داعش کو بنا کر عراق، سیریا اور یمن میں کیا ہے۔ سینچری ڈیل کی تتھا کتھت یوجنا اسی کا ایک حصہ ہے، جسے امریکہ کے پورو راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ کے کال میں فلسطینی اور اسرائیلی وواد کو ختم کرنے کے لیے پیش کیا گیا تھا۔ یہ امریکہ کا ایک اور پینترا تھا۔
سینچری ڈیل امریکہ، اسرائیل اور سعودی عرب کی سازشوں کا ہی حصہ ہے، جس کا مقصد کھیتریہ سرکشا کے سمیکرن کو بدلنا اور اسلامی جگت پر بھرپور نینترن کرنا ہے۔ اسرائیل کی راجدھانی کے روپ میں بیت المقدس کو آدھیکارک روپ سے سویکار کرنا، ویسٹ بینک کے 30% حصے کو اسرائیل کو دے دینا، فلسطینی ناگرکوں کی سودیش واپسی کا ویرودھ کرنا اور فلسطینیوں کا نشستریکرن اس یوجنا کے مہتوپورن حصے ہیں۔
فلسطینی راشٹر اب تک بہت پریشانیاں برداشت کر چکا ہے اور اس نے اسرائیل کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے اور خالی ہاتھ سے اپنی پوتر دھرتی کی رکشا کر رہا ہے تاکہ وہ دوبارہ آزاد ہو جائے۔ اسلامی کرانتی کے ورشٹھ نیتا آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی اسلامی دیشوں کے انتر سنسدیے سنگھ کی 13ویں بیٹھک میں شامل ہونے والے مہمانوں کو سمبودھت کرتے ہوئے اس واستوکتا کی اور اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ زائونی شاسن سے مقابلے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی اجازت اور اس کی کرپا سے زائونی شاسن کے مقابلے میں سنگھرش کا پرینام نکلے گا، جیسا کہ پرتیرودھ نے اتیت کے ورشوں میں پرگتی کی ہے۔
جی ہاں دوستو، 19 جنوری کے دن کو غزہ دیوس کے نام دیا جانا دنیا کے سامنے اسرائیل کے اپرادھوں کو اجاگر کرنے اور فلسطینی جنتا کے مظلوم ہونے کو درشانا ہے، تاکہ پوری دنیا ایک آواز ہو کر پشچم کے سارے سمرتھن کے باوجود فلسطینیوں کے ساتھ ہو جائے۔
دوستوں، کارکرم کا سمے یہیں پر سماپت ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ ریڈیو تہران، سچائی اور ان سب کی آواز جن کی آواز کوئی نہیں سناتا۔ تازہ سماچاروں اور سٹیک سمیکشاؤں کے لیے ہم سے جڑیے اور ہمیشہ جڑے رہیے۔
और अब रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का अगला कार्यक्रम। आज कल
दोस्तों, आजकल के साथ आपकी सेवा में हाजिर हैं स्वाति और कायम रिजवी का सलाम स्वीकार करें। आज हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि फिल्मों की हिंसा बच्चों के दिमाग को कैसे प्रभावित करती है।
दोस्तों, विश्व के सभी देशों में फिल्मों और सीरियलों को बहुत अधिक महत्व हासिल है। इसको मनोरंजन का बहुत अच्छा साधन भी समझा जाता है। ईरान में भी लोग सीरियलों को बहुत पसंद करते हैं, जिनके देखने वालों की संख्या करोड़ों में है। आज हम उस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिसको सामान्यतः फिल्मों और सीरियलों में अनदेखा कर दिया जाता है।
फिल्मों और सीरियलों में हिंसा अब आम हो चुकी है। बड़े पर्दे की फिल्मों से लेकर टीवी सीरियल तथा कार्टून से लेकर एनिमेशन फिल्मों तक हिंसक दृश्यों का प्रयोग मसाले के तौर पर किया जाने लगा है। यहां तक कि सामाजिक सीरियलों में भी अब हिंसा के सीन दिखाई देने लगे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि उनको वे फिल्में और सीरियल बहुत अधिक पसंद होते हैं जिनमें हिंसा अधिक दिखाई जाती है। हालांकि यह भी एक सच्चाई है कि किसी भी समाज में उतनी हिंसा नहीं पाई जाती जितनी हिंसा वाले सीरियलों में दिखाई देती है। इस हिंसा का प्रभाव बच्चों के मन पर बहुत बुरा पड़ता है। हिंसक दृश्यों को देखकर बच्चों के व्यवहार में आक्रामकता आ जाती है।
ग्लोबल हिट बन चुकी वेब सीरीज स्क्विड गेम दक्षिणी कोरिया की है। इसको 90 से अधिक देशों में देखा जा चुका है, जहां पर ये काफी लोकप्रिय रही है। पूरे विश्व में बच्चों के खेलों से भरी इस वेब सीरीज को बहुत अधिक पसंद किया गया। गूगल सर्च पर इसको बहुत अधिक सर्च किया गया है। बहुत से लोगों का ये कहना है कि ये वेब सीरीज बहुत अधिक रोमांचक है, जो मनुष्य के मन और उसके मस्तिष्क पर बहुत गंभीर प्रभाव डालती है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इस प्रकार की वेब सीरीज से विश्व में हिंसा की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है।
साउथ कोरिया के एक डायरेक्टर हवांग डोंग ने स्क्विड गेम नामक एक वेब सीरीज बनाई है। इसमें कर्ज में डूबे हुए कुछ लोगों के बीच गेम कंपटीशन को दिखाया गया है। वे लोग कर्ज से निकलने के लिए इस गेम का हिस्सा बने हैं। इन लोगों को बच्चों के कुछ खेल खेलने पड़ते हैं। विशेष बात यह है कि जो भी व्यक्ति आउट हो जाएगा उसको केवल खेल से ही नहीं बल्कि दुनिया से भी अलविदा कहना होगा। कुल मिलाकर इस वेब सीरीज में बहुत अधिक हिंसक दृश्यों को दिखाया गया है।
इसमें यह भी दिखाया गया है कि हमारा दैनिक जीवन भी बहुत से खतरों से भरा हुआ है और हम जिंदा रहने के लिए बहुत अधिक संघर्ष करते रहते हैं। इसमें इस वास्तविकता को दिखाया गया है कि संसार में बहुत से लोग जिंदा रहने के लिए दूसरों को धोखा देते हैं और अपने दोस्तों के साथ विश्वासघात करते हैं। वे इस प्रकार के घिनौने कामों के माध्यम से स्वयं जीवित रहना चाहते हैं।
हम ये नहीं कहते कि स्क्विड गेम नामक वेब सीरीज कोई विफल सीरियल है, बल्कि यह बहुत लोकप्रिय रहा है। लेकिन विशेष बात यह है कि इसको देखने वाला सीरियल के समाप्त हो जाने के बाद देखता है कि उस पर इसके कई नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं, जिसमें से एक बार जीतने के लिए वैध और अवैध दोनों की कामों का प्रयोग ताकि अंत में सब कुछ हमको ही मिले।
हिंसा एक शब्द है जिसको केवल एक ढंग से वर्णित नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके कई आयाम हैं। हिंसा अपने हर रूप में बुरी ही है। हिंसक प्रवृत्ति के लोगों को समाज में पसंद नहीं किया जाता। फिल्मों और सीरियलों में हिंसा दिखाने से लोगों के भीतर ये भावना बढ़ जाती है, जिसका परिणाम गलत निकलता है। वैसे तो हिंसा को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक वास्तविक हिंसा और दूसरी कृत्रिम हिंसा। फिल्मों और सीरियलों में वास्तविक हिंसा को नहीं दिखाते बल्कि वहां पर झूठी हिंसा को दिखाया जाता है। हालांकि दोनों के भीतर बहुत अंतर है, किंतु फिल्मों में दिखाई जाने वाली हिंसा दर्शकों विशेषकर बच्चों पर वैसा ही प्रभाव डालती है जैसा प्रभाव वास्तविक हिंसा का इंसान के मन पर पड़ता है।
वैसे तो फिल्मों और सीरियलों में दिखाई जाने वाली बातें लोगों को प्रभावित करती है, किंतु विशेषज्ञों का कहना है कि हिंसा का प्रभाव लोगों पर जितना अधिक पड़ता है उतना प्रभाव अन्य बातों का उन पर नहीं होता। इस बारे में बहुत से अध्ययन यही सिद्ध करते हैं कि फिल्मों के हिंसक दृश्य अधिक प्रभावी पाए गए हैं। वे समाज जहां पर हिंसा सामान्य सी बात हो चुकी है और जहां के लोग आए दिन अपने यहाँ पर कोई न कोई हिंसक दृश्य देखते हैं, उन पर हिंसक दृश्यों वाली फिल्मों और सीरियलों का असर अधिक दिखा गया है। इसी प्रकार से वे लोग जो निजी तौर पर हिंसक और झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं, उनके भीतर इस प्रकार के दृश्य हिंसा को अधिक मजबूत बनाते हैं और उनको इस काम के लिए प्रेरित करते हैं।
सामान्यतः फिल्मों और सीरियलों को लोगों के मनोरंजन के लिए या फिर उनको कुछ सिखाने के उद्देश्य से बनाया जाता है। बहुत ही खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि इस समय बहुत से निर्माता और निर्देशक पूरे विश्व में लोगों को हिंसा परोस रहे हैं। इस काम से विश्व में हिंसा बढ़ती ही जा रही है। जानकारों का कहना है कि वर्तमान समय में फिल्मों में 90%, वीडियो गेम्स में 68%, टेलीविजन कार्यक्रमों में 60% और वीडियो की बहुत सी म्यूजिक में 15% हिंसक संगीत पाया जाता है। कुछ अवसरों में इस अनुपात में अंतर हो सकता है। फिल्मों की समीक्षा करने वाले विश्लेषकों का ये कहना है कि पिछले 50 वर्षों के दौरान फिल्मों में हिंसा दिखाने की प्रवृत्ति बहुत तेजी से बढ़ी है।
दर्शकों में आपको ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जिनको हिंसक दृश्यों में किसी भी प्रकार की कोई रुचि नहीं होती, लेकिन फिर भी वे फिल्म या सीरियल देखने के लिए बैठे रहते हैं। इससे पता चलता है कि इन दृश्यों के भीतर एक विशेष प्रकार का आकर्षण पाया जाता है। कहते हैं कि हिंसक दृश्य युवाओं को अधिक अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये भी कहा जाता है कि हिंसक फिल्में किसी व्यक्ति को मानसिक रूप से हिंसक बना देती है। इसका मुख्य कारण यह होता है कि दर्शक फिल्म के पात्रों के साथ सहानुभूति पैदा कर लेता है, फिर वह अपने चाल चलन को उसी पात्र के अनुसार बनाने के प्रयास करता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह न चाहते हुए भी वैसा ही हो जाता है जैसा फिल्म का पात्र था।
दोस्तों, मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि जब समाज में अनुकूल वातावरण मौजूद होता है तो फिर हत्या, अत्याचार, दमन और हिंसा पर आधारित सीन उस समाज में हिंसा को बढ़ाने में मददगार होते हैं। कभी कभी तो यही सीन लोगों के भीतर हिंसक कार्रवाइयां करने के लिए आदर्श का रूप धारण कर लेते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सी फिल्मों और सीरियलों में हत्या करने, यातनाएं देने और अपहरण करने को सामान्य सी बात दिखाया जाता है। इस प्रकार से इस बात को निसंकोच कहा जा सकता है कि लोगों के बीच हिंसा में बढ़ावा देने में फिल्मों की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता।
बहुत से जानकार ये कहते हैं कि सशस्त्र डकैती, हत्याएं, अपहरण और इसी प्रकार के अन्य बहुत से हिंसक अपराध समाज में फिल्मों के द्वारा ही अस्तित्व लेते हैं। वर्तमान युग में टीवी, वीडियो, लैपटॉप, टैबलेट और मोबाइल आदि के माध्यम से बच्चे सरलता से हिंसक दृश्यों को देखते हैं। संचार माध्यमों में भी ऐसे बहुत से दृश्य देखे जा सकते हैं। इन आधुनिक चीजों से बच्चे जितना अधिक निकट होंगे उतना ही वे हिंसक दृश्यों को अधिक देखेंगे। हिंसक दृश्यों का असर बच्चों पर बहुत ही बुरा पड़ता है। बच्चों के दिमाग पर हिंसा के पड़ने वाले प्रभाव को बहुत ही साफ ढंग से देखा जा सकता है।
हिंसक दृश्यों को देखने के बाद बच्चों के भीतर आक्रामकता आ जाती है। बच्चे जब अधिक हिंसक दृश्य देखते हैं तो उनके भीतर हिंसा के बारे में असंवेदनशीलता आ जाती है। वे बच्चे जो हिंसक कार्टून या हिंसक वीडियो गेम्स देखते हैं उनके भीतर आक्रामकता बढ़ जाती है। ये क्रम अगर लंबे समय तक जारी रहता है तो ये उनके भविष्य के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। हालांकि अगर कोई बच्चा एक हिंसक सीन देखता है तो वो ना तो फौरन हिंसक हो उठता है और ना ही उसका कोई दुष्प्रभाव उस पर पड़ता है, किंतु जब यही काम लगातार होने लगता है तो निश्चित रूप से इसका बच्चे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
अफसोस की बात यह है कि हिंसा आज की फिल्मों में बहुत आम होती जा रही है, जिसका गलत प्रभाव बच्चों पर पड़ रहा है। अगर बच्चा हिंसा को एक सामान्य सी बात मान ले तो यह उसके लिए भी और जिस समाज में वह रहता है उसके लिए भी बहुत अधिक हानिकारक बात होगी। अधिक हिंसक दृश्य देखने वाले बच्चे सपनों में भी हिंसा को देखते हैं। कई बार वे सोते हुए एकदम से डर कर उठ जाते हैं। तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। हमें अनुमति दें।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, ये प्रसारण आप शॉर्टवेव में 31 मीटर बैंड बराबर 9390 किलोहर्ट्ज पर सुन रहे थे। कार्यक्रमों के बारे में आपके विचारों, प्रतिक्रियाओं और सुझावों की हमें प्रतीक्षा रहेगी। हमारा ईमेल एड्रेस है hindi@wsirivir। हमारी वेबसाइट का पता है parstoday.com/hi। व्हाट्सएप पर संपर्क नंबर है 0098-9035065492। तो श्रोताओ, इसी के साथ रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा की ये सभा यहीं पर संपन्न होती है। अगली मुलाकात तक अहमद अब्बास और दूसरे सभी साथियों को अनुमति दीजिए। खुदा हाफिज़।